नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती करने का कोई निर्देश जारी नहीं दिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। देश के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग से उसके निष्प्रभावी होने के प्रति आगाह किया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नोएडा में 142 सड़क खंडों का निरीक्षण अभियान चलाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह समझौता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में हुआ।
इस समझौते के तहत अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली सरकार के बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली की वित्तीय व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि अब तक दिल्ली को आरबीआई की संरचित बैंकिंग और सस्ती बाजार उधारी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस समझौते के बाद दिल्ली सरकार की अतिरिक्त राशि का स्वतः निवेश किया जाएगा, जिससे ब्याज आय प्राप्त होगी। इसके साथ ही अब दिल्ली को आरबीआई से कम ब्याज दर पर अस्थायी नकदी सहायता और लगभग 7% ब्याज दर पर राज्य विकास ऋण के माध्यम से बाजार से उधारी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाजार से जुटाए गए सभी संसाधनों का उपयोग केवल पूंजीगत विकास कार्यों में किया जाएगा। यमुना की सफाई, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, सड़क और फ्लाईओवर जैसे बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए दिल्ली के सतत विकास की मजबूत नींव है। प्रादेशिक समाचार के लिए आरजू के साथ नीतिका गुप्ता।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज आम आदमी पार्टी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शिक्षा निदेशालय के किसी भी आदेश में शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती कराने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। श्री सूद ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह निराधार है।
मैंने आप सबकी उपस्थिति में अपनी पत्रकार वार्ता में सर्कुलर पढ़कर बताया था और मैंने कहा था कि अगर इस सर्कुलर में आपको कहीं ये दिखता है कि दिल्ली की सरकार ने कुत्तों की गिनती के लिए शिक्षकों को लगाया तो आप मुझे पढ़कर मार्क करके बता दीजिए, मैं शिक्षा मंत्री के नाते माफी मांगूंगा, अन्यथा अरविंद केजरीवाल जी माफी मांगे। मगर हम दिल्ली की जनता के सामने उनकी शूट एंड स्कूट की राजनीति को नहीं चलने देंगे।
श्री सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में प्रदूषण के मुद्दे पर भी भ्रम फैलाने का प्रयास किया और आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से भाग रही है, जबकि विधानसभा की कार्यसूची में प्रदूषण पर चर्चा शामिल है। इस संबंध में दिल्ली के श्री सूद ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल को पत्र भी लिखा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद कुछ छात्रों द्वारा भड़काऊ नारे लगाने की घटना का संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय ने जेएनयू छात्र संघ से जुड़े इन छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विश्वविद्यालय ने कहा कि इन छात्रों ने आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाकर जेएनयू की आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी इस घटना की निंदा की है। पार्टी नेता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि यह विरोध प्रदर्शन चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 2 किलो 700 ग्राम से अधिक मात्रा में उच्च कोटि का मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह हिमाचल प्रदेश से दिल्ली, मुंबई और गोवा तक मादक पदार्थों की आपूर्ति के लिए सक्रिय था। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मोबाइल छीनने और चोरी करने के अपराध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 31 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें महंगे स्मार्टफोन शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन को अवैध तरीके से बेचता था। इस मामले में आगे की जांच जारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नोएडा में 142 सड़क खंडों का निरीक्षण अभियान चलाया। ये निरीक्षण कल सड़क सफाई, मशीनी सफाई और मौजूदा श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रैप के प्रावधानों के अंतर्गत सड़क खंडों के समग्र रखरखाव की स्थिति का आकलन करने के लिए किया गया था। आयोग ने कहा कि स्वच्छ वायु अभियान के अंतर्गत ऐसे प्रवर्तन अभियान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नियमित रूप से जारी रहेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राजस्थान और पंजाब सरकारों के कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ये इस तरह की समीक्षाओं की श्रृंखला में पांचवी बैठक थी। श्री यादव ने कहा कि इस महीने से कार्य योजनाओं की समीक्षा हर महीने मंत्री स्तरीय होगी। उन्होंने क्षेत्रवार लक्षित कार्य योजनाएं बनाने और संबंधित विभागों पर कार्यान्वयन की स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर बल दिया। देश के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली रोगाणुरोधी प्रतिरोध की समस्या के प्रति आगाह किया है। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से चिकित्सकों की उचित सलाह से एंटीबायोटिक्स का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया। वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल के निदेशक डॉ. संदीप बंसल ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग के प्रति आगाह किया है।
यदि हम एंटीबायोटिक्स को जब उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे वायरल इन्फेक्शंस में, या हम उनको गलत ढंग से प्रयोग करें डॉक्टरी सलाह के बिना, ये सब कारण होते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। तो डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दवाएं लें और अपने आप इस प्रकार की दवाओं का उपयोग ना करें।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर हितेंद्र गौतम ने कहा कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध एक गंभीर समस्या बन गया है।
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से हमारे देश में हर एक व्यक्ति को खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर हम व्यर्थ में इन एंटीबायोटिक्स को लेते रहेंगे तो हमारे अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा कि कल को हम किसी दवाई से ठीक ना हो, इसलिए हमें चिकित्सक के परामर्श के बिना ये एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अब सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज सदन के दो बार स्थगन होने के बाद कार्यवाही की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से जो अशोभनीय व्यवहार किया गया, उसके लिए चार सदस्यों को निलंबित किया गया था। श्री गुप्ता ने कहा कि इस मामले को विपक्ष की नेता आतिशी ने सदन के बाहर तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर सिर्फ नाटक किया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि विपक्ष की नेता को पता होना चाहिए था कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें अध्यक्ष को निर्णय लेना होता है। उन्होंने कहा कि आसन की ओर से किसी भी सदस्य को मास्क लगाने से नहीं रोका गया, इसलिए आसन पर आरोप लगाना सही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेता विपक्ष का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इसके बाद भाजपा विधायक प्रद्युमन सिंह राजपूत ने सदन के पटल पर जरूरी कागजात रखते हुए कहा कि फांसी घर के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कोई भी नेता विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश नहीं हुआ। उन्होंने अध्यक्ष से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं विधायी कार्य मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सदन में न्यायालय शुल्क दिल्ली संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से अदालत के बाहर से समझौता होने या फिर अदालत में समझौता होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि इससे आम लोगों के जीवन में आने वाली छोटी छोटी कठिनाइयां दूर होंगी। कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने सदन में नियम 270 के अंतर्गत अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि देश में गुरु तेग बहादुर की 350 साल की शहादत को मनाया जा रहा है। श्री मिश्रा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने मानवता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत ने सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को एक अहम संदेश देने का काम किया। श्री मिश्रा के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सिखों के इस महान समागम में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये सभी का सौभाग्य है कि गुरु साहब की शहादत पर वर्तमान पीढ़ी की तरफ से नमन कर पाए। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना शीश दिया। ये आज भी हमें सच्चाई और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी भी भविष्य में याद नहीं रखा जाता है। इसके अलावा भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस को भव्य रूप से मनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कला संस्कृति मंत्री का धन्यवाद दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र कादियान ने शहीदी दिवस मनाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सिख भाइयों ने जो सेवा की वह गुरुओं के बताए गए रास्ते को दर्शाती है। भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने अपने कुर्बानी के साथ साथ अपने परिजनों की भी कुर्बानी दी है। आम आदमी पार्टी के अजय दत्त ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को दिल्ली के साथ ही पंजाब सरकार ने धूमधाम से मनाया, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। भाजपा के विधायक राजकुमार भाटिया ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किला में समागम मनाना सराहनीय कदम है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान दूसरे दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आवारा कुत्तों के मामले को लेकर जोरदार हंगामा और नारेबाजी हुई, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा होने लगा, जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक अजय महावर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने का झूठ फैलाने का आरोप लगाया और इस पर उनसे माफी की मांग की। इस मांग के साथ ही सदन में शोर शराबा तेज हो गया। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन की व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति नियंत्रित न होने पर उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आवारा कुत्तों की गिनती के मामले में नारेबाजी शुरू हो गई। इस बीच शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कुत्तों के साथ शिक्षकों को जोड़ा गया है, इसलिए इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष आतिशी को माफी मांगनी चाहिए। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस मामले की संजीदगी को देखते हुए सुश्री आतिशी को माफी मांगनी चाहिए। हंगामा बढ़ने पर सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। राजधानी में आज सुबह के समय कोहरा छाया रहा, वहीं दिन में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती कराने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। देश के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग से उसके निष्प्रभावी होने के प्रति आगाह किया है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नोएडा में 142 सड़क खंडों का निरीक्षण अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।